नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की चावल की लोकप्रिय किस्म गोविंद भोग पर 20% निर्यात कर से छूट देने का आग्रह किया है। ये छूट बासमती चावल को मिलने वाली छूट की तर्ज पर मांगी गई है। बनर्जी ने पत्र में लिखा कि गोविंद भोग जैसे चावल की महंगी किस्म के निर्यात पर 20% शुल्क लगाने का इसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दो पन्नों के इस पत्र में उन्होंने लिखा, भारत सरकार ने चावल पर 20% उत्पाद शुल्क निर्यात कर लगाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप चावल की महंगी किस्म गोविंद भोग का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी मांग पर और धान की घरेलू कीमत पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिससे किसानों की आय भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने लिखा, ये सराहनीय है कि चावल की लोकप्रिय किस्म बासमती को इस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया। अनुरोध किया जाता है कि जिस आधार पर बासमती को छूट दी गई, उसी तर्ज पर गोविंद भोग को भी शुल्क से छूट प्रदान की जाए, जिससे कि व्यापार को होने वाले घाटे से बचा जा सके और किसानों को भी लाभ से वंचित न होना पड़े। भारत में मांग में मजबूती से रोजगार गतिविधियों में उछाल आने और नए कारोबारों में लाभ मिलने की वजह से भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में तेजी आई। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक सितंबर 54.3% पर आ गया था, जो 6 महीने का निचला स्तर था, लेकिन अक्टूबर में ये बढ़कर 55.1 हो गया। ये वृद्धि की तेज गति को दर्शाता है। अक्टूबर में लगातार 15वें महीने सेवा क्षेत्र की गतिविधि में विस्तार देखा गया। खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की संयुक्त निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने कहा, अक्टूबर के परिणाम बताते हैं कि सेवा प्रदाताओं को दाम बढ़ाने के बावजूद अक्टूबर में नया काम मिलने में कोई परेशानी नहीं आई। वहीं मजबूत मांग को समर्थन देने के लिए और लोगों को नौकरियों पर रखा गया तथा कारोबारी गतिविधियों में भी तेजी आई। सर्वे के मुताबिक नए कारोबारों में लाभ का मुख्य स्रोत घरेलू बाजार रहा, जबकि विदेशी बिक्री तीसरी तिमाही की शुरुआत में और घट गई। इसमें कहा गया, मार्च 2020 में कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मांग में मासिक कमी देखी जा रही है। सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC और ESR ग्रुप लिमिटेड ने भारत में लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की खातिर $60 करोड़ करीब 5,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाया। GIC और ESR ने बृहस्पतिवार को 80:20 की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसके जरिए $60 करोड़ का कोष बनाया जाएगा और इसकी मदद से आय देने वाली परिसंपत्तियों की खरीद की जाएगी। ESR भारत के प्रमुख शहरों से पहले से ही विभिन्न औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है। GIC और ESR के बीच ये संयुक्त उपक्रम भारत में उनके बीच मौजूदा साझेदारी का विस्तार है। ये साझेदारी 2020 में शुरू हुई थी। एक बयान में कहा गया कि ये संयुक्त उपक्रम भारत की पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों में रणनीतिक स्थलों पर स्थिर परिचालन करने वाली संपत्तियों में निवेश करेगा। ESR के सह संस्थापक एवं सह CEO स्टुअर्ट गिब्सन और जेफरी शे ने कहा, ESR के नए आर्थिक रियल एस्टेट मंच की वृद्धि के लिए पूंजीगत साझेदार का समर्थन अहम है। भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मजबूत वृद्धि का लाभ उठाने के लिए GIC के साथ मिलकर काम करने को हम उत्सुक हैं। ट्विटर के नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने कहा कि ये सोशल मीडिया मंच इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थान है। मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर की खरीद के लिए $44 अरब के सौदे को पूरा किया था। मस्क ने बुधवार को घोषणा की थी कि ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ब्लू टिक के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने $8 देने होंगे, जिस पर इसके उपयोगकर्ताओं ने रोष जताया है। मस्क ने ट्वीट किया, ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थल है, यही वजह है कि आप अभी इस ट्वीट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था, दाएं बाएं दोनों ओर से एक साथ हमला होना अच्छा संकेत है, आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं। मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के जरिए उपयोगकर्ताओं से जुटाए जाने वाले मासिक भुगतान से कंपनी मंच पर सामग्री बनाने वाले लोगों क्रिएटर्स को पुरस्कृत कर सकेगी। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के दरों में बढ़ोतरी करने और सख्त रवैया अपनाने के बीच रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 8 पैसे टूटकर 82.88 के स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.87 पर खुला और फिर फिसलकर 82.88 पर आ गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 8 पैसे टूट गया। शुरुआती सौदों में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.84 के स्तर तक गया। पिछले सत्र में बुधवार को अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया 82.80 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.53% बढ़कर 111.94 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.38% गिरकर 95.79 डॉलर प्रति के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,436.30 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।